लास्ट वीक शायद हमने टेक्स्ट 7, टेक्स्ट 8, टेक्स्ट 9, 3 टेक्स्ट कंप्लीट किए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट 10 से। सात में 8 में 9 में श्लोक में भगवान ने उनके जन्म का कारण बताया था, और जब भगवान आते हैं तो क्या क्रियाएं करते हैं ये बताया था। साथ साथ ये बताया था कि भगवान के जन्म को और उनकी क्रियाओं को समझने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये 3 श्लोकों में भगवान ने ये 3 फैक्टर बताए थे, उनके आने का कारण, उनके आने के बाद उनकी क्रियाएं, और जो उनके जन्म और उनकी क्रियाओं को समझ जाता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से 3 वस्तुएं डिस्क्राइब की थी। और इस श्लोक में भगवान बताते हैं, नेचुरली भगवान इस प्रकार से बताते हैं, जब हम कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ केस स्टडी को भी बताना पड़ता है। जैसे हम
फिर
अगर कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग के पिछले इतिहास को भी देखते हैं हम, कि पहले जो इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की उनका एग्जाम में कितने मार्क्स आए, उनका कहाँ सिलेक्शन हुआ। मुझे याद है जब मैं AI 2 पर आईआईटी की कोचिंग के लिए गया था, तो सबसे पहले यही देखा था कि कोचिंग के पिछले सालों के रिजल्ट क्या है। तो ये नेचुरल स्टडी है, केस स्टडी को देखना, पास्ट हिस्ट्री को देखना। तो भगवान ने बताया आपने जन्म कर्म के बारे में, ये भी बताया कि मुक्त हो जाएंगे, परंतु अर्जुन को और विश्वास दिलाने के लिए भगवान बताते हैं कि आपके पहले जो भी मेरी शरण में आए हैं वो भी इस प्रकार से मुक्त हो चुके हैं। तो ये उस प्रकार का पास्ट एक्सपीरियंस का भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागत। भगवान बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे मन मया माम उपासिता, जो मेरे पास आए और मेरे शरण ग्रहण की। और जब जो भगवान की शरण में आते हैं तो उनको 3 चीजों से मुक्ति मिल जाती है, या भगवान की शरण में आने के लिए 3 चीजों से मुक्ति हमें प्राप्त करनी होती है। ये 3 चीज होती है, आसक्ति भय तथा क्रोध, राग भय क्रोध। और इन 3 चीजों से जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। तो एक्चुअली ये अगर हम इनको देखें, राग भय और क्रोध, ये वास्तविकता में शरीर में 3 दोषों को भी बताते हैं। आयुर्वेद के नियम के अनुसार राग भय क्रोध जो है वो कफ वात पित्त को भी बताते हैं। जैसे जिसके अंदर पित्त ज्यादा होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है, जिसके अंदर वात ज्यादा होता है उसको भय लगता है, डरता है, मतलब अनसर्टेन होता है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। और जिसको राग मतलब अटैचमेंट ज्यादा होता है उसके अंदर कफ ज्यादा पाया जाता है। तो ये चीजें एक्चुअली 3 दोषों से रिलेटेड हैं, और आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है मनमया माम उपासिता, तो वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध से मुक्त होके बहवो ज्ञान तपस्या। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस ज्ञान के द्वारा पवित्र हो चुके हैं। पवित्र का मतलब पूता, पूता मतलब पवित्र होता है, पूता मद भाव मागत। इस प्रकार के ज्ञान से पूरी तरह से पवित्र होके वो लोग मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। और इसका तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने 3 4 बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। एक तो पहला कॉन्सेप्ट है कि विषय में जो आसक्त व्यक्ति है वो उसको परम सत्य का स्वरूप समझना बहुत कठिन है। जिस व्यक्ति ने अपना इच्छा बनाया है कि भौतिक भोगों में उसको डूबे रहना है, तो उसको भगवान के बारे में बताने से भी व्यक्ति कभी सुनने की इच्छा नहीं करता है। जैसे आज सुबह ही हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब गए थे, तो कुछ कुछ घरों में, एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी, तो वहां पे एक एक बंगले के अंदर गए हम लोग, तो जैसे ही उसके घर पे डोरबेल बजाया तो उसने अपने नौकर को भेजा, और नौकर ने आके जोर से बोला कि डोरबेल मत बजाओ, पसंद नहीं है हमें। तो मुझे याद आया एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, जब साधुओं को देख के, वो भगवान के भक्तों को देख के उनको भगा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भक्त पुस्तक वितरण करने के लिए आया था, तो उस भक्त के ऊपर अपना कुत्ता छोड़ दिया था, और कुत्ते ने आके भक्त का धोती पकड़ पकड़ के खींचा ये सब, तो बहुत मुश्किल से भागता भागता घर के बाहर आया। जबकि ऐसा नहीं था कि वो बिना पूछे घुसा था या कुछ था, पर वो मालिक मालिक देख भी रहा था, परंतु तो मालिक इस प्रकार से राक्षसी प्रवृत्ति का था कि उसने सोचा कि थोड़ा मजा देखते हैं, मेरा कुत्ता इनको परेशान करेगा तो थोड़ा मजा आएगा। मालिक हंस रहा था, कुत्ता भक्त के पीछे भाग रहा था, उसकी धोती पकड़ रहा था, मालिक हंस रहा था। तो सामान्यतः लोग जो विषय में आसक्त होते हैं वो ना तो भगवान के भक्त को समझ सकते हैं ना भगवान के सत्य को समझ सकते हैं, क्योंकि वो भौतिकतावाद में इतने लीन होते हैं कि उनको समझ पाना मुश्किल होता है कि परमात्मा कौन है और परमात्मा भगवान व्यक्ति भी हो सकते हैं कि नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि जिन लोगों की इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, चाहे वो कितनी भी मीटिंग्स करें, कॉन्फ्रेंस करें, मिथो भी पत्ति है तो गर्भ, वो लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। और सामान्यतः भौतिकतावादी लोगों को भगवान भगवान का एक रूप है, भगवान व्यक्ति के समान है, ये समझना उनके लिए और कठिन होता है, क्योंकि जब भी वो शरीर का सोचते हैं तो शरीर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, दुख होता है, उसको याद करके वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि मुश्किल से यह शरीर छूटेगा, इसलिए आप देखेंगे कि मुक्ति बहुत लोग चाहते हैं, परंतु उनको भगवान की भक्ति के बारे में दिखाओ तो उनको लगता है नहीं, वहां भी तो शरीर होगा तो समस्या होगी। उनको ये समझ में नहीं आता है कि भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है, और दिव्य शरीर में कभी भी इस प्रकार के भौतिक शरीर जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आता। तो भौतिकतावादी धारणा इस प्रकार से है कि जब भी शरीर होगा तो दुख मिलेगा, इसलिए वो शरीर को खत्म करके मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वो कभी भी सेवा के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। भक्ति की सेवा, भगवान भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, ये सब उनके दिमाग में नहीं आ पाता, क्योंकि वो भगवान के शरीर को हमारे शरीर जैसे समझते हैं और आध्यात्मिक शरीर को सामान्य जैसे समझते हैं, भौतिक शरीर जैसा समझते हैं, उनको आध्यात्मिक शरीर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो इसलिए जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है, फलस्वरूप भी परमेश्वर को निराकार मानते हैं। ऐसे लोग निराकार ब्रह्म को पूजा करते हैं, भगवान के साकार रूप को समझना उनको कठिन होता है। ऐसे भौतिकतावादी इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं, इसलिए वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। इसीलिए ये लोग शांति प्राप्त करने के लिए शून्य में जाना चाहते हैं, वो भक्ति को नहीं समझ पाते हैं और फिर सोचते हैं कि शून्य में जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। ऐसे लोगों की तुलना समुद्र के बुलबुलों के समान की जाती है। पृथक व्यक्तित्व रहित आध्यात्मिक जीवन की यह परम सिद्धि है। जो लोग निराकारवाद को जानते हैं, फॉलो करते हैं, वो लोग मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं, उसके आगे नहीं पहुंच पाते हैं, और ब्रह्म ज्योति से पहुंच के फिर वापस आ जाते हैं, संसार में वापस आ जाते हैं। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक अनेक फिलॉसफी और खराब संघ के कारण वो समझ ही नहीं पाते कि आध्यात्मिक जीवन है क्या, क्योंकि संसार में इतनी सारी फिलॉसफी है। कोई बोल रहा है भगवान है नहीं, कोई बोलता है भगवान बूढ़े हो गए, कोई बोलता है शैतान ने भगवान को हरा दिया, कोई बोलते हैं कि हम लोग ही भगवान हैं, सभी भगवान हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फिलॉसफी में डूबे हुए हैं और अलग अलग खराब संगति में, गलत संगति में हैं, और उसमें रहने के कारण वो परम सत्य के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोगों को गरीब जैसा बोल सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में गरीब के जैसा, या फिर आध्यात्मिक जीवन में बीमार जैसा बोल सकते हैं। हो सकता है शरीर से वो बहुत फिट हो, परंतु आध्यात्मिक तरीके से वो बीमार है। वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये संसार तो शून्य है, सब कुछ अंत में शून्य हो जाता है। तो तीन प्रकार से भौतिक जगत की आसक्ति से छुटकारा पाना होता है। भौतिक जगत में तीन प्रकार की समस्याएं होती हैं आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के पहले, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करते समय या करने के पहले। एक तो नेग्लेक्ट, व्यक्ति लेजी होता है, कार्य करना नहीं चाहता है। दूसरा होता है भगवान का साकार रूप, भगवान के रूप का रूप समझना उनके लिए मुश्किल होता है। तीसरा होता है शून्यवाद, इस संसार के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये चीजें होती हैं जो कि लोग सामान्यतः आध्यात्मिक जीवन में आते समय कंफ्यूजन होता है। भारत में इन चीजों का बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। भारत में अगर आप लोगों से बात करते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में, तो ज्यादातर लोग इसी में है कि आत्मा और भगवान समान है, सभी लोग भगवान है, अलग से भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है, भगवान के मंदिर क्यों जाना है, गीता पढ़ने की जरूरत क्या है, हम तो खुद ही भगवान है। ज्यादातर लोग इसी में डूबे रहते हैं। और इन तीनों में से एक में आता है वो, या तो नेग्लेक्ट, या साकार रूप का डर, या जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। और तीनों को दूर करने के लिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना पड़ता है, और भक्ति के नियमों का, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के ये सिद्धांत नौ नौ स्टेप्स में दिए जाते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और प्रेम। ये नौ स्तर हैं, और ये सारे के सारे जो नौ स्तर हैं इनको कैसे समझ सकते हैं। पहला स्तर होता है आदम श्रद्धा, श्रद्धा से प्रारंभ होता है। व्यक्ति एटलीस्ट व्यक्ति के पास इतना श्रद्धा हो कि वो जब कोई भक्त उसके पास जाता है तो उस भक्त की बात सुनने के लिए तैयार। उसके बाद उसको कन्विक्शन और ये सब चीजें तो बाद में आ जाती हैं, परंतु भक्त से बात करके उसकी बात को समझने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है तो उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। उसको बोला जाता है आदम श्रद्धा। प्रारंभ में बेसिक श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद अगर वो साधु संग करता है तो फिर उसके अंदर भजन की इच्छा प्राप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, परंतु जब तक किसी व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है तब तक साधु संग का भी उसको फल नहीं पड़ता है। वो श्रद्धा को बढ़ाना नहीं चाहता है या पूरी तरह से वो डाउट में है तो साधु संग का पूरा फायदा नहीं उठा पाता है। जैसे कई बार हम लोगों के घर जाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, सब करते हैं, परंतु उनको आध्यात्मिक जीवन के लिए बोलो या आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ बताना चालू करो तो वो लोग बस शांत हो जाते हैं, फिर जवाब नहीं देते, बोलते हैं नहीं हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप आइए हम आपसे बात करेंगे। परंतु हम बोलते हैं हमारी तो वही बात करनी है, आध्यात्मिक चीजों के अलावा नहीं है। तो लोग फिर आगे समझ नहीं पाते, मतलब कनेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है तभी वो साधु संग करता है। साधु संग में जब वो व्यक्ति आता है तो उसकी भजन क्रिया, तो भगवान के नाम का भजन और भगवद गीता का अध्ययन, भगवान की कुछ कुछ सेवा उसकी प्रारंभ होती है। तो पहला स्टेप है साधु, पहला स्टेप है श्रद्धा, दूसरा स्टेप है साधु संग, और जब तीसरा स्टेप है भजन क्रिया। और जब भजन क्रिया करते हैं तो भजन के प्रभाव से, भगवत नाम के भजन के प्रभाव से, भगवत लीलाओं के भजन के प्रभाव से उसके शरीर उसके अंदर जो अनर्थ है, अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ कम होना चालू होते हैं। और भजन क्रिया प्रारंभ होती है भक्ति योग में आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने के साथ। नवदीक्षित भक्त भजन क्रिया प्रारंभ करते हैं और भजन क्रिया करते करते उनके अंदर जो अनर्थ है वो अनर्थ खत्म होते जाते हैं। और जब अनर्थ खत्म होते हैं, अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है, उसके बाद भक्ति में निष्ठा आती है। तो अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो वास्तविकता में निश्चित भक्ति नहीं है, ये भक्ति अनिश्चित भक्ति है, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर अनर्थ नहीं निकले हैं, अभी हमारे अंदर सारे अनर्थ हैं, बाकी कुछ कुछ प्रोसेस चल रहा है, कभी अनर्थ ज्यादा परेशान करते हैं, कभी कम परेशान करते हैं, कभी कभी हमें लगता भी है कि हमारा अनर्थ जीत गया है, पर अगले दिन ही पता चल जाता है कि हमारी कितनी हालत है। तो इसीलिए ये भजन क्रिया चलता रहता है, अनर्थ निवृत्ति भी चलता रहता है, और अगर व्यक्ति लंबे समय तक इसको करता है बहुत सिंसियरिटी के साथ, तब वो निश्चित भक्ति को प्राप्त करता है, और निश्चित भक्ति आने के बाद फिर व्यक्ति की प्रोसेस आसान हो जाती है, क्योंकि निश्चित भक्ति आने के बाद उसको भक्ति के कार्य करने में मजा आने लगता है, रुचि आने लगती है। रुचि इन द सेंस, अभी जैसे भगवान का नाम हम लेते हैं, तो अभी भगवान का नाम लेने में हमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता हम, क्योंकि क्योंकि किसी ने बोला है, दीक्षा के समय गुरु ने बोला है या सीनियर्स ने बोला है, तो करना पड़ेगा। सोलह माला कोई हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, परंतु जब निष्ठा की स्टेज आ जाती है, निष्ठा की स्थिति के बाद फिर नाम के श्रवण में रुचि बढ़ जाती है, लीलाओं के श्रवण में रुचि बढ़ जाती है। तो भगवद गीता क्लास 45 मिनट से आगे बढ़ने के बाद फिर नींद नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति अगर रुचि के स्तर पे है, तो उसको अगर भागवत क्लास गीता क्लास में बिठा दो, तो वो सुनता रहेगा 3 घंटे 4 घंटे, इस प्रकार से सुनता रहेगा। परंतु नॉर्मली जब हम हमारी स्थिति ऐसी होती है कि क्लास के चालू होते ही समय हम सोचते हैं कि कब ये खत्म होगी क्लास, और टाइम देखते रहते हैं, तो अभी वो हमारे अंदर अनर्थ है, उस अनर्थ के कारण हमारे लिए भक्ति की रुचि नहीं है। भक्ति करते रहेंगे सिंसियरिटी से, तो जब जैसे जैसे ऐसे अनर्थ खत्म होंगे, वैसे वैसे हमारी रुचि बढ़ती रहेगी, और रुचि के बाद फिर आसक्ति आती है। रुचि मतलब टेस्ट, और आसक्ति मतलब वो टेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाता है। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब कि फिर हमें भगवान के नाम के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, अगर हम नाम नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो वो और ऊंची स्टेज है। भगवान हमें अगर कहीं भी रहेंगे, अगर हम नाम नहीं कर रहे, गीता नहीं पढ़ रहे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो भगवान की सेवा से आसक्ति हो जाती है, भगवान के नाम से आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति स्तर से भी आगे हम भजन क्रिया करते रहते हैं, भक्ति की सेवा में लगे रहते हैं, तो फिर भाव की स्थिति आती है। भाव की स्थिति के बाद फिर कृष्ण प्रेम की शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। तो ये 9 स्टेज एक्चुअली भक्ति के 9 स्टेज हैं, सभी शास्त्रों में इनको डिस्क्राइब किया गया, ओरिजिनली भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है, परंतु सारे वैदिक शास्त्रों में इसका डिस्क्रिप्शन है। श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत कथा में भी, भागवत भागवत पुराण में भी इसको डिस्क्राइब किया है कई जगह पर। और ये एक्चुअली दो चीजें हैं, इसमें अंतर समझना होगा। एक तो नवधा भक्ति होती है, नवधा भक्ति ये नहीं है, नवधा भक्ति वो है जो प्रहलाद महाराज ने बताई थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान को श्रवण करना, कीर्तन करना, उनको स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, वो भक्ति की 9 प्रोसेस है। मतलब किस प्रकार से व्यक्ति 9 अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा कर सकता है, और जबकि ये जो प्रोसेस है, ये एक ही भक्त के जीवन में प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, ये भक्ति में प्रोग्रेस के स्टेप्स हैं, और वो भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, और ये भक्ति के प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, कैसे व्यक्ति का प्रगति होता है भक्ति में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक एक्चुअली सबको याद भी रखना चाहिए, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, श्रद्धा के बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, भाव और प्रेम। इस प्रकार से व्यक्ति को, हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है प्रेम की अवस्था तक पहुंचना। और भगवान ने यहाँ पे ये सेक्शन एंड किया, जो 7 से लेके 10 तक चल रहा था, भगवान ने बताया कि जो आते हैं वो पूरे हो जाते हैं, मतलब पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि कई बार लोग भगवान के पास आते हैं शुद्ध भक्ति के लिए नहीं आते हैं, कुछ और अलग कारणों के लिए आते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे पास जिस प्रकार से आते हैं, उनको मैं भी उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूं। और ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, कुछ जो लोग भगवान से मित्रता करने आते हैं, भगवान उनके मित्र के समान रहते हैं, जो भगवान से शत्रुता करने आते हैं, भगवान उनके शत्रु के समान भी रहते हैं। तो जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान तो विग्रह के अंदर होते हैं, तो विग्रह को तो मुस्लिम लोग आके तोड़ के चले गए थे, तो भगवान के विग्रहों ने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? ये बहुत सिंपल है, इस श्लोक से समझना कि जो भगवान के सामने भक्ति के रूप में नहीं आते हैं, भगवान भी उसके सामने उपस्थित नहीं होते हैं। भक्त के लिए भगवान जो है वो विग्रह के रूप में उपस्थित है। और अगर कोई ये सोचता है कि ये विग्रह तो पत्थर है, तो भगवान भी वहां पे पत्थर के जैसे ही उस व्यक्ति के लिए रहते हैं। इसी श्लोक के आधार पे, ये यथा माम उपद्यन्ते, मतलब जो मेरे पास जिस भाव से आता है, काम तथैव भजाम्यहम, उसी तरह से मैं उसको फल देता हूँ। तो जिस तरह से हम भगवान के पास आएंगे, उस तरह से हमें भगवान से रेसिप्रोकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट लाइन में भगवान बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करता है। जो भगवान का बताया हुआ रास्ता है, हर व्यक्ति भगवान जिस तरह से जाते हैं, हर व्यक्ति भगवान के एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। और वास्तविकता में हर व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ ही रहे हैं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग जानते हैं कि वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है, परंतु कृष्ण को तो सभी लोग ढूंढ रहे हैं। भौतिकतावादी लोग भी सुख की तलाश कर रहे हैं, परमानेंट सुख की, और वो परमानेंट सुख की तलाश भी कृष्ण का एक रूप है, क्योंकि भगवान कृष्ण को ढूंढे बिना कोई व्यक्ति, भगवान कृष्ण को पाए बिना कोई व्यक्ति परमानेंट सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन अगला श्लोक निकालना चाहिए, नेक्स्ट श्लोक का बिगनिंग। हाँ, यहाँ पर कण कण में रहने वाले परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। तो चाहे कोई भौतिक भोग में हो, कहीं पे भी हो, परंतु एक्चुअल में वो वास्तविक सुख चाहता है, परमानेंट सुख चाहता है, और परमानेंट सुख चाहना उसका इस बात का सूचक है कि वो भगवान कृष्ण को पाना चाहता है, भले ही उसको नहीं पता है। तो कुछ लोगों को पता है कि वो भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है कि भगवान कृष्ण को पाना पाना चाहते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि हर व्यक्ति मेरे रास्ते को पालन कर रहा है, इसका ये सेंटेंस इसका इस सेंटेंस का ये मीनिंग हो सकता है कि भगवान कृष्ण ने बोला है कि कोई किसी भी रिलीजन को फॉलो करेगा, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण की पूजा करता है, चाहे वो कोई भी नाम हो। और भगवान, हाँ ये बात ठीक है, भगवान यहाँ पे बता रहे, चाहे वो कहीं भी जाए, कुछ भी फॉलो करे, अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली कृष्ण के पास आ रहा है, परंतु भगवान इनडायरेक्टली बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोसेस बहुत लंबा है। और कई बार ये केवल उन रिलीजन्स की बात है जो कि प्रामाणिक है, मतलब जो कि एटलीस्ट भगवान के पास जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल बनाए हुए रिलीजन है जो कि बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं, मेरे पास आओ। बोगस रिलीजन की बात नहीं होती यहाँ पे। और क्योंकि भगवान सातवें अध्याय में बताएंगे कि भजंती अविधि पूर्वकम, जो लोग दूसरे के पास जाते हैं वो भी मेरी पूजा करते हैं, परंतु अविधि पूर्वकम, सही तरीके से नहीं करते, इंडा गलत तरीके से करते हैं। और भगवान चाहते हैं कि लोग डायरेक्टली उनके शरण में आए, उनके समर्पण करें। इसलिए लोग, जब हम भगवत गीता एज इट इज को हम जब बताते हैं, तो लोग उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, बोलते हैं आपका जो भगवत गीता है वो वास्तविकता में एज इट इज जैसा नहीं है, क्योंकि आप हर जगह कृष्ण को, कृष्ण के बारे में बताते हैं। उनको कौन बताए कि भगवत गीता में कृष्ण नहीं अपने बारे में हर जगह बताया। और चूंकि इसके पहले इतनी सारी गीता गलत लिखी जा चुकी है, कि जब इस सही गीता को बताया जाता है तो लोग बोलते हैं आपकी गीता गलत है, बाकी सब गीता सही है। उनसे पूछो कि बाकी गीता में क्या लिखा है, तो बोलते हैं उसमें तो कृष्ण का कुछ मतलब नहीं है, कृष्ण का मतलब है डिवाइन कॉन्सियसनेस। एक भगवत गीता थी, तो उसमें कृष्ण उवाच जहाँ पे रहता है, तो उसमें लिखते ही नहीं है कि भगवान कृष्ण ने बोला, बोलते हैं डिवाइन, द डिवाइन कॉन्सियसनेस वाइब्रेटेड। तो इस प्रकार से लोग गीता का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जब प्रामाणिक भगवत गीता उनके पास जाती है तो उनको समझ में नहीं आती। तो इसलिए प्रभुपाद बताते थे कि ये भगवत गीता यथा रूप जो है इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है संसार में, क्योंकि भगवत गीता के नाम पे लोग अपनी अपना मन की बात बोल रहे हैं, अपनी गीता बोल रहे हैं। एक कोई किसी ने लिखी भी इस प्रकार से, देवदत्त पटनायक ने एक पुस्तक लिखी है माई गीता। उसने बोला था कि जब रामानुजाचार्य और ये सब लोग अपनी अपनी कमेंट्री लिख सकते हैं, तो मैं भी गीता लिख सकता हूँ। तो उसने अपनी गीता लिखी, गीता की ऊपर सारी कमेंट्री दी, उसका नाम है माई गीता। उसका नाम भगवद गीता नहीं रखा उसने, माई गीता रखा। तो ऐसे लोग, पागल लोग, मूर्ख लोग जो हैं, भगवत गीता पे कमेंट्री करते हैं और अपने मन की बात बोलते हैं, गीता की बात नहीं बोलते। और चूंकि मार्केट में इतनी सारी गीता भर चुकी है कि लोगों को यथारूप गीता जब देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि इस गीता में इस प्रकार से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर इतना कचरा रखा हुआ है। परंतु भक्त लोग के संपर्क में रहने से व्यक्ति धीरे धीरे समझ जाता है कि क्या वास्तविकता है। तो कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह से भक्त उन्हें चाहता है। भगवान के धाम में भी भगवान इस सिद्धांत को पालन करते हैं। जो भी जो जो भक्त कृष्ण को स्वामी के रूप में चाहता है उसको भगवान स्वामी के रूप में मिलते हैं, कोई उनको सखा के रूप में चाहता है, कोई पुत्र के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, और सभी को भगवान उसके आधार पे उसको फल देते हैं। तो भौतिक जगत में भी भगवान इस प्रकार से करते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी भगवान का इस प्रकार से संबंध होता है। और जो भगवान को निराकार रूप में पूछते हैं उनको भगवान ब्रह्म ज्योति में भी पहुंचाते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति के तेज में लीन हो जाते हैं, वो भी भगवान ही अरेंज करते हैं। ऐसे निराकारवादी सच्चिदानंद भगवान को नहीं मानते, क्यों, और वो अपने अस्तित्व को मिटा के भगवान के दिव्य गुण की भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और बहुत सालों के बाद फिर से भौतिक संसार में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे सकाम कर्म करने लगते हैं। परंतु बहुत अच्छा है, अगर हमारे अंदर कोई इच्छा भी है, कुछ भी है, तब भी भगवान के पास जाना सबसे अच्छा है। इसमें तीसरे भागवतम दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का ये श्लोक कोट किया गया है, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजे तो पुरुष संपदम। चाहे कोई व्यक्ति के पास कोई भी काम, कोई भी इच्छा नहीं हो, निष्काम हो वो, अकाम हो सर्व काम होगा, चाहे उसके पास सभी इच्छाएं हो, और मोक्ष काम और उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजे तपो संपदा। चाहे कोई किसी भी इच्छा में हो, निष्काम हो, फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर वो तीव्र योग करेगा और उसके बाद भगवान की पूजा करेगा, पुरुषम परम पुरुष की पूजा करेगा, तो उसको उसके अंदर जो भी इच्छाएं होंगी वो भगवान उसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि वो शुद्ध हो जाए। अभी जो लोग इस प्रकार से नहीं चाहते हैं भगवान की भक्ति करना या डायरेक्ट रास्ते में नहीं जाना, वो लोग इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि सभी लोग मेरे पथ का अनुसरण करते हैं, परंतु जो डायरेक्ट नहीं करते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, और वो फिर देवताओं की पूजा करते हैं। कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता चित्रम हि मानुषे लोके सिद्ध भवति कर्मजः। जो लोग इस संसार में सकाम कर्मों को चाहते हैं, सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, और वो यजंत इह देवता, देवताओं की पूजा करते हैं, और इस संसार में क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। देवता लोग जो हैं सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्रदान करते हैं, इसलिए। और सकाम कर्म एक्चुअली छोटी सी चीज है, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति देवता लोग नहीं दे सकते हैं, सकाम कर्म देने का उनको परमिशन है, सकाम कर्मों का फल। और लोग भी यही चाहते हैं, लोगों के पास भक्ति का प्रपोजल लेके जाओ तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परंतु सकाम कर्म वो लोग चाहते हैं, कर्म और उसका भोग करना। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अच्छा तात्पर्य लिखा है इसमें देवताओं के बारे में। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। तो जो देवता हैं वो मिनिस्टर्स के जैसे हैं, अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उसी प्रकार से अलग अलग जीवात्माएं जो एडवांस हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं भौतिक संसार को मैनेज करने के लिए। तो ये देवता भी जीवात्माएं हैं और इनको मनुष्यों से ज्यादा उनको शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु ये देवता कभी भी नारायण या विष्णु के समान नहीं है, नारायण विष्णु या कृष्ण के समान नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर और देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो व्यक्ति नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। इवन ब्रह्मा और शंकर जी की भी तुलना परमेश्वर भगवान विष्णु से नहीं की जा सकती। ब्रह्मा सदाशिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, तो भी आश्चर्य की बात है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के देवताओं की पूजा उन्हें अवतार मानते हैं। एक तरफ तो शंकर जी ब्रह्मा जी तक को भगवान के बराबर नहीं बोला जाता है, और दूसरी तरफ संसार में इतने कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कि इस संसार के नेताओं की पूजा भगवान की जैसा करते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि वो किस कितने ज्यादा मूर्ख है। नारायण विष्णु या कृष्ण इस संसार के नहीं है, वो भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले। इवन शंकराचार्य जी ने भी बताया है नारायण परा अव्यक्तात्, नारायण इस भौतिक संसार से परे हैं, इस भौतिक संसार के हिस्सा नहीं है। परंतु तो जो लोग मूर्ख होते हैं जिनका ज्ञान भौतिक भोग की इच्छाओं ने हर लिया है, वो लोग तत्काल फल चाहते हैं, तुरंत इंस्टेंट चीजें चाहिए उनको, इसलिए वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। परंतु जो उनको फल मिलते हैं वो फल क्षणिक होते हैं, और वो फल जो है कम बुद्धिमान लोगों के लिए। जो वास्तविकता में बुद्धिमान है वो तो कृष्ण भक्ति में स्थिर होता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से जो फल मिलेगा वो परमानेंट होगा, और देवताओं की पूजा करने से जो फल मिलेगा वो संसार खत्म होने के साथ साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि देवता खुद भी मुक्त नहीं है। तो फिर देवता अपने भक्तों को कैसे मुक्त कर सकते हैं? जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाएंगे, परंतु देवता भी संसार जब विनाश होता है तो देवताओं का विनाश हो जाता है। तो ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिसमें देवता भी हैं उनके पूजक भी हैं, ये सभी संसार ये समुद्र में बुलबुले के समान हैं, कुछ समय रहेंगे फिर चले चले जाएंगे। और तब भी मानव जो है वो इतनी क्षणिक वस्तुओं के पीछे पड़ा रहता है और कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं दिखाता है। तो इसके बाद फिर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को उनकी शरण में लाया जाए, उसका क्या एक प्रामाणिक पद्धति है, ये भगवान अगले श्लोक को बताते हैं। और ये श्लोक भगवद गीता में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में आता है, 13 नंबर का श्लोक। इसमें भगवान बताते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम क्या है और भगवान ने क्यों उसकी रचना की है। आप में से कई लोगों को यह श्लोक याद भी होगा, क्योंकि यह श्लोक भगवद गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है, कई बार इस श्लोक का डिस्क्रिप्शन आता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। भगवान बता रहे चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मानव शरीर के मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और ये गुण और कर्मों के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है वो जन्म के आधार पर विभाजित नहीं है, गुणों के आधार पे और कर्मों के आधार पे विभाजित उनको किया गया है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि पायलट का बेटा पायलट नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट जज का बेटा हाई कोर्ट जज नहीं बन सकता है, उसको उसकी क्वालिफिकेशन मैच करनी होगी, क्योंकि वर्णाश्रम जो बनाया गया है वो गुण कर्म के आधार पर बनाया गया है, जन्म और कर्म के आधार पर नहीं बनाया गया। और भगवान बता रहे हैं यद्यपि मैंने इसको बनाया है परंतु तब भी मैं इसके द्वारा बाधित नहीं हूं। अव्यय अकर्ता तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। मैंने इसको बनाया है परंतु इसको बनाने के बाद भी मैं इसका अकर्ता हूं, क्योंकि भगवान को बनाने के लिए खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। इस संसार में हम अगर कोई चीज बनाते हैं तो खुद बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जबकि भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं, परस्य शक्ति विविधैः सूयते, इतनी शक्तियां हैं कि भगवान उन शक्तियों के द्वारा ऑटोमेटिकली सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान स्रष्टा भी है परंतु अकर्ता भी है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद उन्हीं में समा जाती है, इसलिए वे वर्णाश्रम व्यवस्था के स्रष्टा है। जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। आजकल वर्णाश्रम को बहुत डेमोनाइज किया जाता है, मतलब लोग बोलते हैं वर्णाश्रम जाति प्रथा है और इसको खत्म हो जाना चाहिए, परंतु वर्णाश्रम भगवान के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है। वर्णाश्रम का जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है वो जाति प्रथा कहलाती है। वर्णाश्रम का डिस्क्रिप्शन इस तात्पर्य में आता है, जो कि सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो सत्वगुण में होते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो रजोगुण में होते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर जो है वैश्य, वो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से हैं। उसके बाद जो शूद्र है वो तमोगुण में पाए जाते हैं। तो ब्राह्मण सत्वगुण में, क्षत्रिय रजोगुण में, वैश्य रजो और तमोगुण के मिक्सर, और शूद्र तमोगुण में, वो मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि भगवान के द्वारा की गई है। भगवान इसमें से किसी विभाग में नहीं आते हैं, यद्यपि वो इनके स्रष्टा हैं परंतु इनमें से किसी विभागों में नहीं आते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि भगवान वर्णाश्रम के बारे में इस देवताओं की पूजा करने वाले श्लोक की बात क्यों बता रहे हैं? क्या भगवान ये बताना चाहते हैं कि इंटेलिजेंट लोग मेरी पूजा करते हैं चार डिवीजन के द्वारा और बुद्धि प्राप्त करते हैं? या गुड क्वेश्चन। इसके जस्ट पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया है कि 11 नंबर श्लोक में भगवान बताया था कि जो मेरे पथ का अनुसरण करते हैं वो मेरे पास आते हैं, सभी लोग मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। वो 12 नंबर में बताया कि जिनकी बुद्धि कमजोर होती है वो देवताओं के पास जाते हैं, और 13 नंबर में बताया कि ये सिस्टम क्या है। तो सिंपल फ्लो अगर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। 11 नंबर में भगवान बता रहे हैं कि मरने वाले बुद्धिमान लोग मेरे पथ का अनुगमन करते हैं, सभी लोग मेरे पथ का अनुगमन करते हैं, और उसमें से जो कम बुद्धिमान वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो अधिक बुद्धिशाली होते हैं वो मेरे द्वारा बनाए हुए ये जो सिस्टम है वर्णाश्रम, इस सिस्टम का पालन करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद का भी एक विजन था कि किस प्रकार से सोसाइटी को वर्णाश्रम में डिवाइड किया जाए। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन में इस चीज को इम्फेसाइज किया कि जब तक सोसाइटी को वर्णाश्रम में हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक कृष्ण भक्ति का प्रचार भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं उसका असर। अभी हम भक्ति का प्रचार करते हैं परंतु सभी लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा जटिल है कि इतनी जटिल लाइफ स्टाइल के कारण लोग भक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अभी आप देखिए मॉडर्न टाइम में लोगों का जॉब का जो शेड्यूल है, अलग अलग शिफ्ट चलती हैं, 12 घंटे 14 घंटे जॉब। तो जब वो घर लौट के आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा एनर्जी जा चुका है, खत्म हो चुका है। तो वो लोग फिर भक्ति में थोड़ा बहुत कर पाते हैं, 16 माला करना भी कठिन होता है। इसलिए वर्णाश्रम जो पद्धति है वो नेचुरली हमें प्रदान की रही भगवान के द्वारा, जिससे कि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सके। यस, किसी ने अपना हाथ उठाया है, प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। नाम इसमें किसी का लिखा नहीं है, 4238318 उन्होंने हाथ उठाया है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर इस क्लास के बाद पूछ सकते हैं सेशन के बाद। ओके, तो प्रभुपाद के जो हम कन्वर्सेशंस देखते हैं स्पेशली 1975 से लेकर 77 के बीच में, उसमें प्रभुपाद जी ने बहुत बार इम्फेसाइज किया कि वर्णाश्रम को स्थापित करना है, फार्म कम्युनिटीज को स्थापित करना चाहिए, और अपना भोजन खुद उगाना चाहिए, और गाय का पालन और शुद्ध भोजन करना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये समाज का उसको त्याग करना, और शुद्ध वैदिक व्यवसाय पे फोकस करना, ये सारी चीजें प्रभुपाद जी चाहते थे। इम्फेसाइज कई बार इम्फेसाइज किया, प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन के फॉलोअर्स उसको करें, क्योंकि जब हम वर्णाश्रम में रहते हैं तो नेचुरली भक्ति की प्रोसेस आसान हो जाती है, क्योंकि हमें भौतिक समाज से कुछ लेना देना नहीं है, और अपने कार्यों के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। वर्णाश्रम बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि लोगों की जिस प्रकार से नेचर है उसी नेचर के आधार पर उनको ऑक्यूपाई किया जाता है, उनको सेवाएं दी जाती हैं। वर्णाश्रम में थोपा नहीं जाता है कि हर व्यक्ति को इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को डॉक्टर बनना पड़ेगा। कई बार माता पिता बच्चे के जन्म के समय ही बोल देते हैं कि इसको डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा, परंतु वर्णाश्रम ऐसा नहीं था। जिस बच्चे के अंदर उसके गुरु जो थे, गुरुजन जो थे, वो उसके नेचर को देखते थे, उस नेचर के आधार पे उसको एंगेज किया जाता था, उसको एक्टिविटी दी जाती थी। तो किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। उसका साइकोलॉजिकल नेचर, तीन गुणों का उस पे क्या प्रभाव है, उसके आधार पे उसकी प्रवृत्ति का निर्धारण होता था। उसी के आधार पे उसका जॉब डिसाइड किया जाता था। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म तथा परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी इस प्रकार के वर्णाश्रम के भी पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा के रूप में, भगवान के दास के रूप में पहचान चुके हैं। तो वो किसी एक देश के ऐसे नहीं होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा शरीर केवल भारतीय है, परंतु मैं तो हर सभी के लिए समान हूँ। और प्रभुपाद जी बताते थे कि अमेरिकन नौजवानों ने जिस प्रकार से मेरी मदद की, उतना तो मुझे भारत के लोगों ने भी नहीं की। प्रभुपाद बताते थे, अमेरिका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने मुझे आके मुझे गुरु की आज्ञा प्राप्त पालन करने में मदद की। जब मैं भारत में था तो कोई मेरी मदद नहीं करता था। भारतीय लोग डूबे हुए थे अमेरिका जाने के लिए, और अमेरिका के लोगों ने मेरी हेल्प की। और प्रभुपाद बताते थे कि मैं अपने आप को कोई भी देश से आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। जिस भी देश में कृष्ण भक्ति का प्रचार अच्छे से होगा, उस देश में मैं जाकर प्रचार करूंगा, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो। कई बार प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से बताया। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो किसी भी देश देश विशेष के नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवत धाम से आते हैं, तो हर जगह पे वो भगवान के दर्शन करते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान वर्णाश्रम में नहीं है, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त भी वर्णाश्रम में नहीं आते, वर्णाश्रम से ऊपर आते हैं। परंतु शुद्ध भक्त ऐसे बहुत कम पाए जाते हैं। सामान्यतः व्यक्ति को वर्णाश्रम में रह के अपनी क्रियाओं के आधार पर कार्य करके, अपने नेचर के आधार पर कार्य करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। इसका अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट वीक उसको डिस्कस करेंगे। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ये भी फेमस श्लोक है कि मुझे कोई भी कर्म नहीं बांधते हैं, ना तो मुझे कोई कर्म के फल को भोगने की इच्छा होती है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे कोई कर्म बांध भी नहीं पाते हैं, और कर्म के फल भोगने की भी मुझे कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसा जो मेरे बारे में जानते हैं उनको भी कर्म के फल बांध नहीं पाते हैं। अच्छा श्लोक है वो, उसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक हम इसको करेंगे। श्लोक संख्या 14, 4.14। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर है तो। अगर
हरे
कोई प्रश्न
कृष्णा,
नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग। हरे कृष्णा। यस
ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने एक श्लोक में जो ट्रांसलेशन बताया कि किसी को भी जैसे हम वर्शिप करते हैं, लाइक जो अपने अपने को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान को फॉलो कर रहे हैं। देन फिर
हाँ
हम ऐसा क्यों कहते हैं? अब जब भगवान भी ये भी तो कहते हैं कि जो मुझे पूजा करता है वो मेरे धाम पे लौट के आएगा, देन लाइक अगर कोई अल्लाह वगैरह उनको पूजा करते हैं या फिर कोई क्योंकि कहीं ना कहीं से तो भगवान की आराधना कर रहे हैं ना, ये चीज भी कह रहे हैं फिर वो चीज भी कह रहे हैं, तो कैसे समझेंगे इन दोनों चीजों को एक साथ में?
दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। वो वाला श्लोक जो भगवान ने बोला है कि जो मेरी पूजा करेगा मेरे धाम में आएगा, उसमें भगवान ने इनडायरेक्ट पूजा नहीं लिखा, उसमें भगवान ने डायरेक्ट पूजा लिखा हुआ है। साथ में अध्याय में आता
मतलब
है वो।
स्टैंड्स मतलब वो डायरेक्टली भगवान कह रहे कि मुझे ही करना है, इट इज फॉर्म ऑफ अ
हाँ
कृष्ण।
हाँ और
ओके
एक्चुअली अगर कोई अल्लाह की भी पूजा कर रहा है तो सबसे पहले देखना होगा कि अल्लाह के नियमों का ही पालन कर रहा है क्या। प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन को हिंदू बनाने के लिए आया हूँ, मैं क्रिश्चियन में से अच्छा वास्तविक क्रिश्चियन बनाने आया हूँ, मुस्लिमों में से वास्तविक मुस्लिम बनाने आया हूँ। जो लोग अभी बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद बताते थे कि क्रिश्चियन से जीसस ने बोला कि आपको किसी को मारना नहीं चाहिए, परंतु तो उन्होंने सबसे पहले जीसस को ही मारा। तो कैसे जीसस के फॉलोअर्स हैं? प्रभुपाद बोलते थे कि जीसस ने उनके उनको बोला दाउ शैल नॉट किल, आपको किसी को मारना नहीं चाहिए, और सबसे पहले उन्होंने जीसस से ही शुरुआत की, उनको ही पकड़ के मार डाला। तो फिर कैसे कोई बोल सकता है कि क्रिस वो जीसस के फॉलोअर है? तो इस प्रकार से अगर कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है तो उसका प्रोग्रेस होगा, परंतु ज्यादातर लोग तो केवल नाम के लिए बोलते हैं कि हम अल्लाह को फॉलो कर रहे हैं या हम जीसस को फॉलो कर रहे हैं, अल्टीमेटली अपनी इंद्रियों को फॉलो करते हैं, उनकी इंद्रियां जो बोलती हैं वो करते हैं, और केवल नाम के लिए बोलते हैं कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे वर्शिप से कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट वर्शिप का मतलब भगवान को मानना, मतलब भगवान के नियमों को मानना है, वो दोनों एक साथ साथ एक ही साथ आते हैं। ओके।
यस प्रदीप, थैंक यू।
ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं संडे को इसी टाइम पे 11 बजे। आज शाम की क्लास, आप शाम को भी क्लास होगी, उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं 7:30।